कंपेरेटिव मेथड, तुलनात्मक ढंग क्या है? व्हाट इज कंपेरेटिव मेथड? तुलनात्मक ढंग की परिभाषा कीजिए, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, हम इस ढंग को कहाँ और किस प्रकार सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकते हैं। तुलनात्मक ढंग के अर्थ और प्रकृति का वर्णन करने से पहले यह समझ लेना चाहिए कि इस ढंग का प्रयोग केवल तुलनात्मक अध्ययनों के लिए ही नहीं किया जाता। यह अध्ययन का एक ऐसा ढंग है जिसका प्रयोग प्राचीन समय से लेकर अब तक राजनीति के सभी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए किया जा रहा है। राजनीतिक अध्ययन में जब विद्वान विभिन्न राज्यों, सरकारों, राजनीतिक संस्थाओं, प्रक्रियाओं, संबंधों तथा व्यवस्थाओं का अध्ययन करके अपने सिद्धांत और विचार प्रकट करते हैं तो इस तुलनात्मक ढंग कहा जाता है। तुलनात्मक ढंग का अध्ययन हम दो भागों में कर सकते हैं, परंपरागत तुलनात्मक ढंग तथा आधुनिक तुलनात्मक ढंग। परंपरागत तुलनात्मक ढंग, अरस्तु वह प्रथम दार्शनिक था जिसने तुलनात्मक ढंग का प्रयोग व्यवस्थित रूप में किया ताकि राजनीति संबंधी सिद्धांतों को पाया जा सके। उसने 158 ग्रीक संविधानों की कार्य प्रणालियों का विश्लेषण और तुलना करके अपने निष्कर्ष निकाले। उसने इस ढंग का प्रयोग करके विभिन्न राज्यों में विद्यमान राजनीतिक गतिविधियों की व्याख्या और भविष्यवाणी भी की। अरस्तु के पश्चात राजनीति शास्त्रियों की एक बड़ी संख्या में ने तुलनात्मक ढंग का प्रयोग करके राज्य सरकार, प्रभुसत्ता, अधिकार, विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अर्थात सभी राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया। पहले आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक मैकियावेली ने भी राजनीति और सरकार के बारे में अपने निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए इसी ढंग का प्रयोग किया था। 18वीं शताब्दी में मॉन्टेस्क्यू ने अपने राजनीतिक सिद्धांतों की रचना करने के लिए तुलनात्मक ढंग का प्रयोग किया। इसी प्रकार डी टॉकविल, जे एम मिल और कई अन्य राजनीतिक वैज्ञानिकों ने अध्ययन के तुलनात्मक ढंग का प्रयोग। तुलनात्मक ढंग में ऐसी दो राजनीतिक संस्थाओं की तुलना होती है जो कि एक तत्व को छोड़कर बाकी रूप में एक समान होती है, और इसका उद्देश्य होता है कि अलग तत्वों के परिणामों की खोज की जाए। लेकिन परंपरागत तुलनात्मक ढंग केवल विभिन्न संविधानों, सामान्यतः यूरोपीय संविधानों की राजनीतिक संस्थाओं के संगठनों और शक्तियों में समानताओं और असमानताओं के अध्ययन के लिए किया जाता रहा। इसका प्रयोग एक पक्षीय और औपचारिक ही बना रहा। औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं या फिर यूरोपीय संविधानों की उनकी विशेष विशेषताओं के आधार पर तुलना की जाती थी। विषय का नाम तुलनात्मक सरकार था और तुलनात्मक ढंग का प्रयोग करके विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं की सामान्यताओं और असमानताओं, गुण और दोषों का वर्णन किया जाता था। बहुत बार लगभग सदैव ही यह प्रयास किया जाता है कि यह देखा जाए कि कौन सी राजनीतिक संस्थाएं दूसरों से अच्छी थी, कौन सी संस्थाएं सबसे उत्तम थीं और कौन सी संस्थाएं सबसे अधिक शक्तिशाली थी। आधुनिक तुलनात्मक ढंग, मॉडर्न कंपेरेटिव मेथड। आधुनिक समय में तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र और प्रकृति में हुए क्रांतिकारी परिवर्तनों के कारण तुलनात्मक ढंग की प्रकृति और क्षेत्र में भी बड़े परिवर्तन हुए हैं। अब तुलनात्मक ढंग में वैज्ञानिक साधनों के प्रयोग से आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है और वर्गीकृत किया जाता है, उनमें आपसी संबंध ढूंढे जाते हैं और उनका विश्लेषण किया जाता है। आधुनिक तुलनात्मक ढंग को अध्ययन का एक वैज्ञानिक ढंग बनाया कि सभी प्रक्रियाओं, राजनीतिक गतिविधियों, संरचनाओं और कार्यों का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है ताकि इनके व्यवहार में विद्यमान समानताओं और भिन्नताओं का वास्तविक और स्पष्ट विश्लेषण किया जाए। आधुनिक तुलनात्मक ढंग, प्रकृति या विशेषताएं। मॉडर्न कंपेरेटिव मेथड, नेचर और फीचर। ऊपर वर्णित परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक ढंग की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, राजनीति की सभी पहलुओं के संबंध में शोध करने वाला यह एक निश्चित अध्ययन ढंग है। दूसरा, अपने वर्तमान स्वरूप में यह सिद्धांत निर्माण और अनुसंधान की वैज्ञानिक ढंग है। तीसरा, तुलनात्मक ढंग के द्वारा भिन्न तत्वों में अनुभववादी संबंध ढूंढे जाते हैं। चौथा, यह एक विशाल स्वरूप वाला सामान्य ढंग है, न कि एक संकीर्ण विशेष तकनीक। पांचवा, इसका उद्देश्य है सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं का व्यवस्थित विश्लेषण और तुलना। छठा, आधुनिक तुलनात्मक ढंग में भी सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं की संरचनाओं, कार्यों, उपव्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है। सातवां, तुलनात्मक ढंग के द्वारा विभिन्न समाजों के लोगों के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले सभी राजनीतिक और गैर राजनीतिक तत्वों का विश्लेषण किया जाता है। आठवां, तुलनात्मक ढंग अनुसंधान के वैज्ञानिक ढंग है। यह एक कठोर, व्यवस्थित और औपचारिक अनुसंधान ढंग है जिसमें तथ्यों के अनुभववादी विश्लेषण किया जाता है। नौवां, तुलनात्मक ढंग में तथ्यों को मूल्यों से अलग रखने का प्रयास किया जाता है। तुलनात्मक ढंग के मूल तत्व, एसेंशियल्स ऑफ द कंपेरेटिव मेथड। तुलनात्मक राजनीति के वैज्ञानिक ढंग के रूप में तुलनात्मक ढंग में निम्नलिखित विशेषताएं या प्रक्रियाएं विद्यमान होती हैं। पहला, धारणात्मक इकाइयों की परिभाषा। दूसरा, वर्गीकरण। तीसरा, कल्पनाओं का निर्माण और उनका परीक्षण। पहला धारणात्मक इकाइयों की परिभाषा। डेविड एम वुड लिखते हैं कि हम केवल उन्हीं वस्तुओं की तुलना करते हैं जिनको तुलना के योग्य समझा जाता है। ऐसी वस्तुओं में कुछ पहचानने योग्य समानताएं होनी चाहिए ताकि इनमें समानताओं और भिन्नताओं के आधार पर तुलना की जा सकती हो। इसलिए अपने अध्ययन और तुलना के लिए इकाइयों की पहचान करते समय अनुसंधानकर्ता को समानताओं को देखना पड़ता है, चाहे कि तुलना का उद्देश्य भिन्नताओं या असमानताओं को ढूंढना ही क्यों न हो। वुड कहता है कि पहले समानताओं को पहचान कर व्यवहारिक रूप में तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में हम कब यह बात मान कर रही कि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में सत्तायुक्त नियमों का निर्माण किया जाता है। दूसरा, वर्गीकरण। सबसे बड़ी आवश्यकता वर्गीकरण है। जिस प्रकार की बॉसवी लिखता है, जब हम एक समान इकाइयों की तुलना करते हैं तो हम किसी एक सिद्धांत के आधार पर उनमें विभिन्नताओं को भी देखते हैं। ऐसे आभास में आवश्यक रूप में वर्गीकरण शामिल होता है। जब हम धारणात्मक इकाइयों को स्पष्ट रूप में परिभाषित करने का कार्य करते हैं तो हम आवश्यक रूप में उस प्रक्रिया में व्यस्त हो जाते हैं जिसमें विशेष तत्वों को की परख कल्पनाओं के परीक्षण के द्वारा की जानी होती है। तीसरा, परिकल्पना का निर्माण और परीक्षण। तुलनात्मक ढंग का एक और आवश्यक तत्व है परिकल्पना का निर्माण। परिकल्पना के निर्माण के बिना तुलनात्मक राजनीति में सिद्धांत निर्माण के लिए कोई भी वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं किया जा सकता। डॉक्टर जेसी जौहरी लिखते हैं, तुलना करने का कार्य इस ढंग से होनी चाहिए कि परिकल्पनाओं का निर्माण और परीक्षण किया जाए। परिकल्पना की रचना हम राजनीतिक विज्ञान और तुलनात्मक राजनीतिक व्यवस्थाओं के क्षेत्रों से प्राप्त सूचनाओं या तथ्यों के आधार पर कर सकते हैं। तुलनात्मक